تفسير سورة المؤمن آيات نمبر 69 یہاں سے اللہ رب العزت مشرکین کے حالات پر روشنی ڈال رہے ہیں جو اپنے جھوٹے اور باطل دلائل کے ذریعے قرآن مجید کی آیات کی تردید کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترى الى الذين يجادلون في آیات الله، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، یہ گمراہی کے کس گڑے میں گر پڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے عبرت حاصل نہیں کرتے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ دلائل جو ہیں ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یصرفون کا لفظ جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، یصرفون اس کا روٹ ہے سواد را فا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا، پھیر دینا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ موڑ دینا، رخ پھیر دینا، کہ یہ کدھر کو جو ہے وہ پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے یہ پھیرائے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتابی، یہ لوگ جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور ان ساری کتابوں کو بھی جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی۔ تو اب یہاں پہ بیماری بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ٹھوکرے کھانے کی، ان کے جھگڑے کرنے کی، اور ان کے ہدایت سے پھرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں، اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی بجائے یہ جھگڑالو پن کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس رویے کی فوری سزا نہیں دی، ان سے قبول حق کی توفیق نہیں چھینی، لیکن جلدی ان کو جو ہے وہ پتا چلے گا، اور جلدی سے مراد کیا ہے، قیامت کی گھڑی۔ اِذَلْ اَغْلَالُ، فرمایا کہ جب الاغلال، جب طوق، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، یہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیمی، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی الناری یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں جو تھے تم شریک ٹھہراتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، اس وقت وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو، پھر وہ جھوٹ بولنے لگیں گے، انکار کریں گے کہ اس سے پہلے تو ہم پکارتے ہی نہیں تھے کسی اور کو، اور اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 70 سے لے کر 74 تک، 70 سے 74 تک، یہاں پہ سب سے پہلے مرض بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا اور میرے رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ دنیا میں ان کو فوراً نہیں پکڑتا، لیکن دنیا میں بھی بعض لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، ان پر سخت سزائیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو ان کا حال کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ اِذَلْ اَغْلَالُ، کہ جب الاغلال جو ہے وہ انہیں پہنائی جائیں گی۔ تو الاغلال جو ہے یہ غل واحد ہے، इसकी जमा अगलाल भी है गलूल भी है। गुल हर वो चीज जिससे किसी को किसी के अजा को जकड़ कर उसके दरमियान में बांध दिया जाए, जैसे हथकड़ी है किसी को लोहे के कॉलर पहना दिया जाए, जैसे मुजरिम की गर्दन को हाथों को पाओ को कंट्रोल करने के लिए बेड़ियां और तौक पहना दिए जाते हैं तो उसको अगलाल कहते हैं। और ये लफ्ज मादी और हिस्सी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी के दिल में जो है वो जंजीर आ जाए हसद की या किबर की या कीना और कदूरत की जंजीर हो तो फिर वो हदायत कबूल नहीं करता, फिर वो हक बात जो है उसको कबूल नहीं करता, वो क्या करता है कि वो इनकार करता चला जाता है। तो लेकिन ये जो मुजरिम है जो दुनिया में किब्र करते थे कुफ्र करते थे इनकार करते थे तो कयामत के दिन इनकी गर्दनों में टॉक होंगे। और साथ ही फरमाया के और फरमाया कि वस सलासिल, सलासिल जो है इसका वाहिद है सिलसिलातुन, सीन लाम लाम, एक चीज से दूसरी चीज को खींच लेना, नियाम से तलवार को जो है वो सोंतना, तलवार को खींच कर निकालना, इसी से सिलसिला है। जैसे जंजीर जिसकी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, इसी से किसी का एक चीज से दूसरी चीज से लिंक बनता चला जाता है। तो इस तरह सलासिल का लफ्ज भी जंजीरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 71 के आखिर में आपको यूस हबून नजर आ रहा है, यूस हबून, इसको आप नोट करें, सीन हा बा इसका रूट है, इसके मानी है घसीटना। सीन हा बा में घिसटने का पहलू नुमाया है, खींचने का काम। आपको पता है कि एक होता है किसी को घसीटना और एक होता है खींचना, इन दोनों में फर्क होता है। कोई चीज खड़ी की बजाय पड़ी भी हो, यानी खड़ी भी नहीं है पड़ी भी है, जमीन पर है पड़ी भी है गिरी भी है, तो उसे आप क्या करती हैं, आप उसे फिर घसीटती हैं। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो खड़ी भी है तो फिर आप उसको जो है वो खींचती हैं। तो सीन हा बा जो है इसके मानी है घसीटना। सहाब बादलों को भी कहते हैं, हवाओं से उन्हें खींच कर चलती है और वो खुद इस तरह बादल आगे बढ़ते चले जाते हैं जैसे घिसटते हुए चले जा रहे हों। तो ये मुजरिम जो है ये अल्लाह के यहां वहां पे जहन्नुम में गिरे पड़े होंगे और इनको घसीटा जाएगा फिल हमीमी खोलते हुए पानी में। अब आप देखें कि यहाँ पे हमीम जो है यहाँ पे खोलते हुए पानी का जिक्र किया जा रहा है, शदीद तरीन खोलते हुए पानी में उन्हें घसीटा जाएगा। गर्दनों में टॉक है आग के, पाँव में बेड़ियां डाली हुई हैं, बांधे हुए हैं, शदीद तरीन खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे। सुम्मा फिन्नारी युस जरून, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। युस जरून इसका रूट है सीन जीम रा, सीन जीम रा, इसके मानी है वो चीज जो आग में शिद्दत पैदा करने के लिए तनूर में झोंक दी जाए, तनूर को ईंधन से भर देना ताकि आग पूरी शिद्दत से भड़क उठे। वल बाहरिल मसजूर, और सजरा में मुफस्सरीन कहते हैं कि एक मानी है भरावा होना और दूसरा है हलचल, तलातुम इस्तराब, तो पानी समंदर को भर देगा, समंदर जोश मारेगा। और जैसे जोश मारने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है और आग की शिद्दत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप देखें ऊपर अगर आप 71 आयत का आखिरी लफ्ज देखें यूस सबून और 72 में यूस जरून, ये आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत बारीक सा देखने में फर्क नजर आता है, मानी में बहुत फर्क है और तालिबे इल्म इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको जरा समझ लें, सीन हाबा घसीटना है, सहाब बादल हवाएं उनको घसीटती हैं, सीम जीम रा इसके मानी है सीन जीम रा के आग की शिद्दत, तो आग में झोंक दिए जाएंगे। तो आप देख लें कि ये मुजरिमों की कैफियत बताई जा रही है कि अब उनके जिस्मों में आग लगा दी जाएगी। पहले ही तो वो खौलते पानी में डाले जा रहे हैं ना, लेकिन जैसे लकड़ी में आग लगा दी जाती है, इस तरह इनके जिस्मों में आग लगा दी जाएगी, इन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। तो माकील लहुम, फिर उनसे कहा जाएगा ऐना मा कुंतुम तुशरिकून, फिर उनसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि अब कहाँ है अल्लाह के सिवा तुम्हारे वो खुदा जिनको तुम शरीक करते थे, जिनकी तुम इबादत करते थे, अब वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते, अब वो खुदा तुम्हारे काम क्यों नहीं आते। मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा तुम उनको पूछते थे। फालू, वो कहेंगे दल्लू अन्ना, के वो जो थे वो खोए गए हमसे, वो सारे हमसे गुम हो गए। बल्लम नकुन नदउ मिन कबलु शैया, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे, हम तो दुनिया में शिर्क नहीं करते थे। तो अब वो कयामत के दिन जब अजाब में होंगे, तो उस वक्त अपनी अपने अकली तवाजुन को खो बैठेंगे। एक राय ये है कि वो ये कहेंगे कि हमने तो दुनिया में किसी की इबादत की नहीं थी, और दूसरी राय ये है यहाँ पे कि जब वो कयामत के दिन के अजाब को देखेंगे, हकीकत उनके सामने आएगी, तो कहेंगे कि दुनिया में हम जिन्हें पुकारते थे वो तो कुछ भी नहीं थे, वो तो हीच थे। कजा लेका युदिल्लाहुल काफिरीन, इस तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह कर देता है। फरमाया कि इस तरह गुमराह करता है अल्लाह काफिरों को। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्दी बिग़ैरिल हक़। उनसे कहा जाएगा कि ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे। तफराहुना फिल अर्दी, तफराहुना जो है इसके मानी है तुम खुश होते थे जमीन में, बगैर हक की, बगैर हक के। फबिमा कुंतुम तमरहून, और इस वजह से कि तुम इतराते थे। और असल बात क्या थी कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे और फिर तुम इस पर इतराते थे। वा बिमा कुन तुम तमरहून, मीम रा हा, ये यहाँ पे अहम है, और इस इसी आयत में फाराहा, तो फाराहा के मानी तो आपको पता ही है कि खुश होना और गलत कामों पर खुश होना ना, यहाँ पे ये बुरे मानों में खुश होने के लिए है। और मीम रा हा जो है इसके मानी है कि नाजो अदा से अकड़ अकड़ कर चलना। आपने पीछे सूरत लुकमान में पढ़ा था ना कि लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि वला तमशी फिल अर्दी मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, तो वहां पे भी यही था। तो और तुम क्या करते थे कि तुम जो जमीन में गैर हक पर मगन थे, फिर तुम उससे इतराते भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुमने गलत चीजों की पैरवी की, तुमने शिर्क किया, बल्कि तुम नाहक गैर हक में इतने मगन थे कि जब हक तुम्हारे सामने पेश किया गया तो तुमने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, तुम उसी में मगन रहे, तुम उसी में अकड़ते रहे। उदखुलू अबवाबा जहन्नम खालिदीन फीहा, अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है। फबेसा मसवल मुतकब्बिरीन, बस बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का, किब्र करने वालों का। फसबिर इन्ना वादल्लाही हक, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो झगड़ा करने वाले, बहसें करने वाले, शकूक शुभात पैदा करने वाले, और ये जो इनकी चालें हैं, इनके मुकाबले में आप सब्र कीजिए। इन्ना वादल्लाही हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वो आपको जरूर कामयाब करेगा। फइम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी नईदुहुम ओ न तवफ्फयन्ना का फइलैना युरजऊन, अब खा हम तुम्हारे सामने ही इनको उन बुरे नतायज का कुछ हिस्सा दिखा दें जिनसे हम उन्हें डरा रहे हैं, या उससे पहले तुम्हें दुनिया से उठा लें, पलट कर आना तो इन्हें हमारी ही तरफ है। अब यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको सता रहे हैं तो हम दुनिया में उनको सजा दें, इम्मा नोरियन्ना का अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दिखा दें आपको बाद अल्लाह जी कुछ हिस्सा उस चीज का नए दो हम इनसे जो वादा करते हैं, यानी इनकी बदअमलियों पर जो हमने बुरी सजा देने का जो वादा किया है, हो सकता है आपकी जिंदगी में इसका कुछ सजा का हिस्सा आ जाए इनके ऊपर। और ये भी हो सकता है औ नतवफ्फयन्ना का कि इससे पहले हम आपको वफा दे दें, यानी आपको मौत आ जाए और इनको सजा ना आए, बाद में ऐसा हो। फइलैना युरजऊन, आखिरकार पलट कर तो इन्हें हमारी ही तरफ आना है। दुनिया में इनको सजा मिले आपकी जिंदगी में या आपके बाद, या सजा ना भी मिले, बहरहाल ये मेरी गरिफ्त से बच नहीं सकते, मरकर जाएंगे कहाँ, लौट कर आखिर मेरी ही तरफ आना है। फिर मैं इनके गुनाहों की, फिर मैं इनके कसूरों की इन्हें जो है वो सजा दूंगा। तो यहां पर जो है ये जो बुरे लोग हैं उनके अंजाम पर उन्हें डराया जा रहा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। फिर आयत नंबर 78 में भी जो है वो तसल्ली ही है कि वलकद अरसलना रसूलम मिन कबली का, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं, मन कससना अलैका, जिनमें से बास के हालात हमने आपको बताए हैं, व मिनहुम मन लम नक्सुस अलैक, और बास के हालात आपको नहीं बताए। अब आप देखें कि इससे क्या बात पता चलती है, कुफारे मक्का रसूल अल्लाह से कहते थे कि हम आपको उस वक्त तक अल्लाह का रसूल नहीं मान सकते जब तक कि आप हमें जो है वो हमारा मुंह मांगा मौजजा ना दिखा दें। तो अब उनके मौजजात का जवाब जो है, उनका मुतालबा किए बगैर, उनके मौजजात का जो मुतालबा था उसको नकल किए बगैर उसका जवाब दिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ रसूलों के हालात आपको बताए हैं और कुछ के हालात जो हैं वो आपको नहीं बताए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जितने रसूल अल्लाह ताला ने वक्तन फक्तन दुनिया में भेजे हैं तो उन सब का जिक्र कुरान में नहीं है। क्यों? यहाँ पे अल्लाह ताला खुद ये कह रहे हैं कि कुछ का जिक्र आपसे किया है और बाज ऐसे भी हैं जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। वमा कान अल रसूलिन यातिया बि आयतिन इल्ला बि इज़्निल्लाह, किसी रसूल की ये ताकत ना थी कि अल्लाह की इजाजत के बगैर खुद कोई निशानी ले आता। तो जितने भी रसूल भेजे किसी ने अपनी मर्जी से कोई मौजजा नहीं दिखाया। वो रसूल जरूर थे लेकिन मौजजा दिखाने पर कादिर नहीं थे। तो ये है कुफार के मौजजे के जवाब, मुतालबे का जवाब। फाइजा जा अमरुल्लाही, फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया, कुदिया बिल हक की, तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया, फखसिरा हुनालिकल मुब्तिलून, और उसी वक्त गलतकार लोग जो थे वो खसारे में पड़ गए। फिर वो लोग जो थे वो, उनका नतीजा क्या निकला कि वो बर्बाद हो गए। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अनआमा लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून। तो आप देखिए आयत नंबर 79 से 81 तक, यहां पर अल्लाह ताला ने कायनात से अपनी रबूबियत की निशानियों की तरफ इशारा किया है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए मवेशी बनाए, लितरकबू मिन्हा, ताकि इनमें से तुम किसी पर सवार हो, मिन्हा ताकुलून, और इनमें से किसी का गोश्त जो है तुम खाओ। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कैसी कैसी नेमतें जो है वो पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे दावत फिक्र नजर दी है ताकि लोग अल्लाह अपने खालिक अपने रज़ाक को पहचाने और उस पर ईमान लाएं और उसकी इबादत करें। कहा तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, तुम इन पे सवारी करते हो जैसे ऊंट हैं और घोड़े हैं और गधा है और बहुत से जानवर, और बाज के गोश्त खाते हो, गाय बकरी भेड़ है। वलकुम फीहा मनाफेहू, इनके लिए, इनके अंदर तुम्हारे लिए बहुत से नफे हैं। वलकुम फीहा मनाफेहू, तुम्हारे लिए इनमें मनाफे हैं। और क्या मनाफे हैं इनके अंदर? ऊन, बाल, चमड़ा हासिल करते हो। ऊन का फायदा क्या है कि सामान्य तिजारत एक शहर से दूसरी जगह, इसके जरिए से रास्ता तय करते हो, कश्ती के जरिए से, बहरी जहाज है, कश्ती है, समंदर में सफर करते हो। तो वलकुम फीहा मनाफे हो, इनके अंदर तुम्हारे लिए और भी नफे हैं। वले तब लोगू अलैया हाजतन फी सुदूरिकुम, और वो इस काम भी आते हैं कि वाले तब लोगों, ताकि तुम पहुंच सको, अलैहा इनके जरिए, हाजतन जहां जरूरत पेश आती है, फी सदूरेकुम तुम्हारे दिलों में, कि तुम्हारा दिल करता है ना कि तुम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ, तो इन जानवरों के जरिए, इन सवारियों के जरिए तुम वहां पे पहुंच जाते हो। वह अलैहा व अलल फुल की तुहमलून, और इन पर और कश्तियों पर तुम जो है वो सवार होते हो। फयुरीकुम आयाते ही, अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हें दिखा रहा है। फअय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, अफलम यसीरू फिल अर्दी फयनजुरू कैफ काना आकिबतुल्लजीना मिन कब्लिहिम। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो गौर व फिक्र की दावत दी है कि क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं है कि इनको उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। क्योंकि अब ये बिल्कुल इख्तितामी आयात हैं, तो यहां पर आप अगर इस सूरत की इब्तदाई आयात को सामने रखें, जैसे आयत नंबर 4, 5, आयत नंबर 21, आप उनको सामने रखें, तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दोबारा जो है इन्हें मतवज्जो कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जो कुछ भी दिया था और पिछली कौमों ने इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनका क्या अंजाम किया था? तो क्या अहले मक्का जमीन में चले फिरे नहीं है कि इनको उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? कानू अक्सरा मिनहुम, वो इनसे तादाद में बहुत ज्यादा थे। वह अशद्द कुव्वतन, इनसे बढ़कर ताकतवर थे। वह आसारन फिल अर्दी, जमीन में इनसे ज्यादा शानदार आसार छोड़ गए हैं, यानी जमीन में जो उनकी निशानियां हैं कि महल तामीर करना, इमारतें बनाना, जो उनकी तमद्दुन था, सकाफत थी, तहजीब थी, बड़ी उसकी यादगार निशानियां इन्होंने छोड़ी हैं। फमा अग्ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जो कुछ कमाई उन्होंने की थी आखिर वो उनके किस काम आई? कुछ भी उनके काम ना आया। प्यारी बहनों, ये जो आयत है, आयत नंबर 82, ये मुझे और आपको भी जो है वो गौर व फिक्र की दावत देती है कि मैं और आप इबरत हासिल करें और सोचें कि अल्लाह के पास जाने के लिए मेरे और आपके पास क्या है। आमतौर पर इंसान जो है वो किस पर फखर करता है, और आप किसको ज्यादा कामयाब समझती हैं? जो दुनिया के लिहाज से कामयाब होता है, किसको आप कामयाब कहते हैं? कहते हैं कि वो बड़ा कामयाब है, उसके सारे बच्चे पैर चले गए, उसके सारे बच्चे जो है वो फलां फलां डिग्री उन्होंने ले ली, फलां तालीम हासिल कर ली, और वो बड़ा ही अकलमंद निकला। देखें, उसने अपना घर भी बना लिया और फला रिश्ते बड़े अच्छे कर लिए, और दुनिया के लिहाज से जो भी हमें कामयाबियां नजर आती हैं, तो हम एक एक को गिनते हैं और कहते हैं वाह भी वाह, क्या कामयाब है ये लोग ना। लेकिन प्यारी बहनों, असल कामयाबी क्या है? अल्लाह की अताअत की जाए, अल्लाह के आगे अपना दिल, अपना सर, अपना दिमाग और अपना जिस्म जो है वो झुका दिया जाए। ये माल और औलाद जो है वो अल्लाह के यहाँ ये कुछ भी काम नहीं आएगी अगर दामन जो है वो अल्लाह की अताअत से खाली है। अल्लाह ताला कह रहे हैं फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, जो कमाई उन्होंने की थी आखिर वो उनके किस काम आई? फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, जब उनके रसूल इनके पास बय्यिनात लेकर आए, फरेहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मी, तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो इनके अपने पास था। अब आप देखें कि दो तरह के इल्म होते हैं, एक होता है सिरीहन दुनिया का इल्म और एक होता है दीन का इल्म। और यहां पर जो है बात हो रही है दुनिया के इल्म की, साइंस फलसफा और अपनी ही एक मेथोडोलॉजी जो है जिसको उस इल्म को जो इंसान बहुत ही अच्छा समझता है तो अल्लाह ताला इसका जिक्र कर रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया कि जो दुनिया का इल्म था ऐसा इल्म जिससे दुनिया के लिहाज से तरक्की हासिल की जाए बस वो उसी में मगन रहे, और जो इल्म आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताता था तो उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो ही ना की। दुनिया का इल्म इंसान के अंदर बर्तरी का एहसास पैदा करता है और दुनिया की तरक्की के दरवाजे इंसान के सामने खोल देता है। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाती, जब उनके रसूल उनके पास बय्यिनात लेकर आए, फरहू बिमा इंदहुम, तो वो खुश थे जो कुछ उनके पास था मिनल इल्मी इल्म के लिहाज से। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, फिर वो उसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो यहां पर जो है वो बताया जा रहा है कि कुरान के इल्म और सीरत का जो इल्म है, जो इस्लाम का इल्म है, इसके लिए जो है वो अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलने चाहिए और इसके लिए वक्त निकालना चाहिए। अगर कुरान सीरत हदीस का मताला करने के साथ साथ हम दुनिया का भी इल्म हासिल करते हैं तो फिर जो है ये इबादत बन जाता है कि डॉक्टरी के साथ साथ आप ये सोचते हैं कि मुझे एक मुसलमान डॉक्टर बनना है, आप 5 वक्त की नमाज का ख्याल रखते हैं जो फर्ज है, आप ज़कात देते हैं, आप जो हैं वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, आप जो है वो इलाज करते हैं, लेकिन आप याद रखते हैं कि असल शिफा देने वाला अल्लाह है और आप जो है वो बड़ाई में मुब्तला नहीं होते, तो ये इल्म भी इबादत बन जाता है। तो याद रखिएगा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। इल्लामा इकबाल ने बड़ी सही बात कही थी कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शब जो है उसमें सहर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शब शबे तारीख जो है उसको सहर कर ना सका। तो इससे क्या बात पता चलती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एक फार्मासिस्ट बनिए लेकिन मुस्लिम फार्मासिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, यूटी में आप आइए, आईटी में आप आ जाइए, या आप जो है कोई भी पेशा अख्तियार करें लेकिन जो है वो अल्लाह को ना भूलें, ऐसी तालीम जो आपको मुसलमान बनाए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया जो पिछली कौमें थी कि उन्होंने रसूलों का इनकार किया और आखिर जो है अल्लाह के अजाब ने इनको घेर दिया, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे वो आकर रहा, क्या अजाब। कलम्मा राऊ बासना, फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया, कालू वो चीख उठे पुकार उठे, आमन्ना बिल्लाही वहदहू, हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वकफरना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन, और उन सब माबूदों का जिन्हें हम शरीक ठहराते थे इनकार करते हैं। फलम यकु यनफाउहुम ईमानुहुम लम्मा राऊ बासना, मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफे ना हो सकता था। क्यों? इसलिए कि मौत आने के बाद और अजाब आने के बाद फिर ईमान फायदा नहीं देता, और यही अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत अल्लाही, यह है अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह ती कद खलत फी इबादी, जो हमेशा इसके बंदों में जारी रही। वखसीरा हुनालिकल काफिरून, और उस वक्त काफिर लोग जो है वो खसारे में पड़ गए। तो प्यारी बहनों, ये थी हमारी सूरत अल मोमिन, जिसे सूरत गाफिर भी कहते हैं और इसके साथ जो है सूरत तौल भी कहते हैं। और इसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो है वो तौहीद और आखरत और रिसालत के दलाइल दिए गए हैं, और ये बताया गया है कि हमें जो है वो दुनिया में रहते हुए आखरत की तैयारी करनी है। अल्लाह के पास जो हमारी मुलाकात होगी उसकी हमें तैयारी करनी है, और ये बताया गया है कि आखरत में सिर्फ इंसान के हुस्ने आमाल जो है वो इंसान के काम आएंगे। इस सूरत में जो है चंद एक मुश्किल अल्फाज भी आए हैं, और आपने उनको पहले भी पढ़ा था। चलते चलते मैं दो तीन इसके मुश्किल अल्फाज आपके सामने फिर रख देती हूँ। जैसे आयत नंबर 5 में ले युद हेदू है, सूरत अल मोमिन आयत नंबर 5 ले युद हेदू, इसका रूट है दाल हा द्वाद, फिसला देना, डगमगा देना। जैसे कोई जब किसी को जिबा कर दिया जाता है ना, तो जब जिबा किया जाता है तो वो पाँव अपने पाँव को पटकता है, वो पाँव इधर उधर मारता है। क्यों? इसलिए कि अब उसकी बस हो जाती है ना, तो बस उसकी शिकस्त की ये अलामत है। इसी तरह सूरज का मगरिब की जानिब ढलना, उसके लिए भी आता है। तो ये युद्ध है दू, फिसला दे, शिकस्त दे दे। और आयत नंबर है 10, इसमें लमक्तु और मक्तकुम है, और मीम काफ ता जो है असल में बाप की बेवा से शादी करना, जवाजल मक्त। तो बाप की बेवा से शादी करना अहले अरब के लिए बहुत ही नफरत की बात थी, वो तो किसी से बहुत ही नफरत करते थे अगर कोई ऐसा कर ले। तो इसलिए मक्तु का लफ्ज नफरत और गुस्से और सख्त नापसंदीदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आयत नंबर 15 में लफ्ज है तलाक, इसका रूट है लाम काफ या हर्फ इल्लत गिर चुका है, और मानी है यहाँ पे बहम मुलाकात करना। तो यौमत तलाक, इस सूरत में आपने कयामत के नए नए नाम पढ़े कि यौमत तनाद, यौमत तलाक और यौमल अशहाद, है ना, आपने ये सारे अल्फाज जो है वो पढ़े हैं। और एक और लफ्ज जो आज सबक में आया है वो है किफल का लफ्ज है। किफल का लफ्ज है, आपने इंसानियत इंसानों के जो मुख्तलिफ मराहिल पढ़े इंसान की पैदाइश के, ये आयत 67 में है। किफलन ये नरमो नाजुक को कहते हैं, त्वा फा लाम, जब तक बच्चा नरमो नाजुक होता है वो तिफल होता है, यानी ऐसे बच्चे जो बालिग नहीं होते, तो उसके लिए ये तिफल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि यही अल्फाज थे जब मैं तेजी से गुजरी, तो कुछ मैंने कहा कि एक दफा फिर इनको एंड पे कह देती हूँ। आयत 83 में लफ्ज है हाका, हा या काफ, किसी चीज का किसी चीज पर नाजिल होना, आ घेरना, किसी मुसीबत आफत या अजाब का नाजिल होना जिसमें वो घिर जाए। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको आखरत की तैयारी करने वाला बनाए, हमें वो इल्म हासिल करने वाला बनाए जिससे हमें हदायत मिले और हम अपने रब को राजी कर सकें। और वो इल्म है कुरान का इल्म, वो इल्म है हदीस का और सीरत का इल्म, तो इसके लिए हमें वक्त जो है वो निकालना चाहिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ कि दुनिया का इल्म जब आपने हासिल किया, आप डॉक्टर बने, आप फार्मासिस्ट बने, आप बैंक मैनेजर बने, आप आईटी की जो है वो इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वट एवर, जो भी डिग्री आपने हासिल की, आपने अपनी जिंदगी के कितने साल उसके लिए लगाए, आप कितनी रातें जागी, आपने कितने थीसिस लिखे, आपने कितने वाइवे दिए, आपने कितना हाउसवर्क किया, कितने प्रैक्टिकल किए, कितनी मेहनत की, कितनी दुआएं की, कितने डॉलर और पैसे लगाए, पूरी अपनी जवानी, पूरा अपना वक्त। और जब बात है जन्नत की और बात है आखिरत की, बात है रब को राजी करने की, बात है कुछ कर गुजरने की, तो उसके लिए 1 साल और 2 साल वो भी भारी हो जाते हैं, हालांकि अब तो पूरी जिंदगी इस पे लगानी है ना। तो आप अपना जरूर मुहासबा करें, अपना जायजा लें कि मैं कैसे अपने ईमान को बढ़ाऊं, मैं कैसे अमले सवाले करूं, कैसे मुझे अच्छा इल्म मिले कि मैं आखिरत की तैयारी जो है वो कर सकूं। तो आज आप नियत करें, आज आप फैसला करें कि अब अपनी जिंदगी के जितने भी साल हैं, मेरे पास जितना वक्त है, वो इंशाल्लाह अब मैंने जो है वो आखिरत की तैयारी में, कुरान का इल्म हासिल करने में जो है वो गुजारना है। और उसके लिए आप अपने वक्त की ऑडिटिंग करें और जंप करें, उसके लिए ऑडिटिंग करें वक्त की और जंप करें और फिर कुछ कर गुजरें। अल्लाह करे कि हम उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएं जो कि वक्त का एहसास करते हैं, जिंदगी की कदरों कीमत को जानते हैं और फिर ईमान और अमले सवाले की पूंजी जो है उसके मुतलाशी बन जाते हैं, उसके हरीस बन जाते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।